जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा विप्लव महा महोत्सव के दिन भौतिक जीवन का सच इस विषय पर 14 फरवरी 2016 को इस्कॉन नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
और आठ माला के करीब और चार माला के करीब और एक माला कोई माला नहीं चार सर सर पड़े भाग्यशाली हो जैसे आप जानते हो
आप एक बार आज एक बड़ा शुभ दिन है। क्या है आज
अद्वैत आचार्य कौन थे उन्हें भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि सब अवतारों में वह सबसे दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भगवान पृथ्वी पर प्रकट क्यों होते हैं? भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं हम जैसे पतितों के उद्धार पर। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जैसे कि भगवान ईश्वर प्रभुपाद को भेजा। जैसे आप जानते हो ये साल हम इस की गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं आप जानते हो। दूसरे शब्दों में 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी ने इस कौन संस्था की स्थापना की कौन से देश में तो इस कौन के 50 साल हो रहे हैं और पिछले साल हमने उत्सव मनाया था प्रभुपाद का डिपार्चर फ्रॉम इंडिया अगस्त के महीने में प्रभुपाद जी 1965 में चले थे कलकत्ता से अमेरिका के। तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। भगवान जब अवतारित होते हैं तो अपने भक्तों को भी साथ लेकर आते हैं अकेले नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य प्रकट हो गए। अद्वैताचार्य अद्वैता का अर्थ है कि देव और आत्मा में कोई अंतर नहीं। आचार्य जो कि अपने उदाहरण से शिक्षा देता है ये नहीं जैसे आज के हम देखते हैं बड़े बड़े उपदेश लोग देते हैं उनका जो आचरण है उसके आधार पर नहीं होता। आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से धर्म के नियम ट्रांसलेट हुई आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से धर्म के नियमों को प्रकट करता है। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे महाप्रभु से कोई 40 साल पहले उनके लगभग दादा की उम्र के थे जब आप पंचतत्व की तस्वीर देखते हो, अद्वैत आचार्य की तस्वीर देखते हो दाढ़ी के सामने, क्यों? क्योंकि उनमें लगभग उनके दादा के समान है। अद्वैत आचार्य को महाविष्णु का अवतार माना जाता है, पर भगवान कई बार जब प्रकट होते हैं, अपनी अद्भुत दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जैसे जब भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और कई बार भगवान प्रकट होते हैं भक्त के रूप में, जिसके द्वारा लोगों में शिक्षा दे सके भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। उसी प्रकार अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान है और प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए शांतिपुर में, उन्होंने उनका सदा एक ही उद्देश्य था, उद्देश्य ये था भगवान का गुणगान, हरि नाम का उच्चारण, कृष्ण कथा की चर्चा। अद्वैत आचार्य अपने घर में कीर्तन करते थे बकाया, और कई स्मार्ट ब्राह्मण जो थे उन दिनों में भारत में, खासकर बंगाल में, मुसलमानों का राज्य था, तो मुसलमान राजा हिंदू धर्म का बहुत विरोध करते थे और हिंदुओं को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, और जो काम वाले थे वो डरते भी थे, अगर हम हरि नाम की इत्यादि करेंगे तो मुसलमान राजा हम सबको सताएगा। तो हरिदास अद्वैत आचार्य, उन्होंने देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, लोग अपने आप को धार्मिक बुलाते हैं, उनका जो आचरण है पापियों का है, जैसे कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। उन्होंने ये वातावरण देखा, तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे क्या किया जाए। हालांकि अद्वैत आचार्य खुद भगवान के अवतार हैं, हाँ विष्णु के, और वो चाहते थे कि परम भगवान प्रकट हो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उन्होंने बड़ी गहरी प्रार्थना की, गंगा के तट पर अद्वैत आचार्य और एक और भक्त थे जिनका नाम साहब हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। हरिदास वैसे ही ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, और इस विषय में लंबी कथा है जिसके लिए समय नहीं है। तो अद्वैत आचार्य हरिदास का जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, वो दिन रात को हरि नाम का जाप करते थे। मुसलमान राजा ने उन्हें एक समय 22 बाजारों में घसीटा, पीते गए लोग, हरि नाम बंद करो, हरि नाम बंद करो, हरिदास ने हरि नाम बंद नहीं किया। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य सारा दिन भागवत पढ़ते थे और हरि नाम का प्रचार। दोनों ने देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई, भगवान के जो भक्त हैं उनके मन में सदा यही भाव रहता है कैसे परिजनों को उद्धार किया जाए। जैसे ये जो विप्लव उत्सव किया जाता है भगवत के पदम स्कंद में, नारद मुनि कहते हैं कि वो सिद्धांत लिटरेचर जिसमें भगवान का गुणगान नहीं हो उसे कोई लाभ नहीं। जैसे आप बुक स्टोर में जाओ किसी मैगजीन स्टैंड में जाओ आपका 50,000 पारे लिखी मिलेंगी किताबें मिलेंगी मतलब भगवान का कुछ ज्ञान नहीं। अमेरिका में एक पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स संडे वाले दिन का जो अखबार निकलता है उसमें 250 से 300 पेज होते हैं पर भगवान का एक शब्द नहीं उसे क्या करें। पर जिस लिटरेचर में भगवान की चर्चा हो अगर उसमें कुछ कमी भी हो छापने में तो उसका ज्यादा मतलब तो ये जो उत्सव किया जा रहा है सुंदर गोपाल प्रभु के निर्देशन में इसका भाव क्या है आप में से कौन बताएगा क्या भाव है चाहता कि आप में से कोई सुनाए क्या भाव है गोपाल जी क्या भाव है सर का
चेतना में कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस चेतना हो
भाव ये है असल में आपको सुखी बनाना मानोगे नहीं इस समय हम सब अत्यंत दुखी हैं क्लेश से भरे हुए हैं चिंता से भरे हुए हैं चिंता से भरे या नहीं भरे चारों तरफ क्लेश क्लेश कष्ट ही कष्ट जन्म मृत्यु के बंधन में हम फंसे हुए हैं पर अगर आप भगवान के शरणागत होने का प्रयास करोगे तो असली सुख किसे कहते हैं वो आप समझ पाओगे। आज जो सुख आपको मिल रहा है बौद्धिक समाज में ये नकली सुख है। मान लो आप मुकेश अंबानी बन जाओ जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है बिल गेट्स बिल गेट्स से परिचित हो आए ना विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हाँ और मेहनत उसकी यहाँ संपत्ति बढ़ते जाती है तो मान लो आप बिल गेट्स इतना धन भी प्राप्त कर लो क्या ये सुख हमेशा रहेगा कितने बड़े करोड़पति आए और गए कितने बड़े फिल्मी कलाकार आए और गए कितने बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी आए और गए तो आप देख सकते हो बहुत ही संसार में कष्ट ही कष्ट दुखी दुख हम सोचते हैं बस अच्छी डिग्री मिल जाए तो अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छी नौकरी मिले वहां देखते हैं नौकरी में भी हमको सबको सलाम करना पड़ता है सच है झूठ सलाम नहीं करोगे तो छुट्टी हो जाएगी अगर हमने सलाम करना ही है तो भगवान को सलाम करो भगवान की सेवा करो क्योंकि चाहे आपको कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए अगर गूगल कंपनी का नाम सुना ना तो गूगल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है एक भारतीय लड़का जो हैदराबाद आंध्रा का है हालांकि अमेरिका में 40 साल से बोलता है गूगल इंडियन एक्सेल के साथ तो उसको इस समय विश्व के एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कब तक रहेगा सब पूरे तो भौतिक संसार में चाहे आपको कितना भी ऊंचा पद मिल जाए थोड़ी देर में है जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी से कोई बच सकता है आप जन्म लेते हो रोते हुए रोग पीड़ा हमें नहीं चाहिए अनुभव करनी पड़ती है बुढ़ापापन चाहिए किसी को अगर आप किसे बुरे व्यक्ति को बोलते हो हम तो बड़ा जवान दिख रहे खुश हो जाते हैं कि नहीं सच्ची में जवान देखो। और अगर आपने किसकी बेइज्जती करनी हो जवान को बोलता बड़े बुरे दिख रहे तो आपसे बात भी नहीं करेगा। इतना पैसा खर्चते हैं मेकअप करने में, मेकअप समझते हो चेहरे पर सजाने में। आज तो कोने कोने में भारत में ब्यूटी सलून है ना, देखते हैं यूनिसेक्स तो पुरुष होते हैं औरतों में। हमारे एक भक्त हैं जिनकी एक बहुत बड़ी दुकान है ब्यूटी सलून है सूरत में, तो वो मुझे कहता है कि शादी से पहले लोग आकर लाखों रुपए खरीदते हैं मुंह खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ी देर ही चलता है फिर वापस मजबूर किया जाता है, तो शादी वाले दिन सब खूबसूरत देखने लगता है। ये है नकली दुनिया, बुढ़ापा पर बीमारी मृत्यु से रोक सकता है। तो शास्त्र में कहा गया है शुरू से अंत तक कष्ट ही कष्ट है, कभी कभी हमें सुख की झलक दिख जाती है। हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे जैसे प्राचीन समय में कैदियों को सजा कैसे देते थे, पानी के सागर के बीच में ले जाते थे, सिर्फ डुबकी जो जरूरत थी सिर को पानी के नीचे रखते थे, ये देखे कि मर नहीं जाए थोड़ी देर के लिए ऊपर निकाल देते थे सांस लेने के लिए फिर वापस पानी के नीचे। तो ये है भौतिक जीवन का रूप है, कष्ट कष्ट और बीच में हमें थोड़ी देर के लिए सुख की झलक दिखती है, और जब सुख की झलक दिखती है तब सोचते हैं सुखी सुखे कहाँ है कष्ट। आप सब तो भाग्यशाली हो कि आप पढ़ने गए थे कॉलेज में भक्तों के समझ में आए, आपका आध्यात्मिक जीवन भी आरंभ हो गया। पर कई हैं जिनको आप निमंत्रण देते हो आओ कार्यक्रम में, वो क्या कहते हैं समय नहीं, तुम तो मूर्ख हो, इस उम्र में भक्ति कर रहे हो तो भक्ति कब करनी चाहिए, भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए, जब तुम एक बूढ़े हो जाओ, जब तुम मरने वाले हो, जब तुम आधे अंधे हो आधे बहरे लंगड़े, तो कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, जब भगवान का भजन करना चाहिए, जब तक शरीर में ताकत है दुनिया दारी हो। ये ज्ञानता का भाव, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सोचता है चारों तरफ कष्ट कैसे कैसे, क्या कोई उपाय नहीं है। भौतिक समाज में कई बार आपको ऐसी बीमारी होती है और आप डॉक्टर से पूछते हो क्या है इलाज, डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी नो इलाज। पर शास्त्रों में समस्या की पहचान है और समस्या को हल कैसे करना उसकी भी शिक्षा है। तो आपको जो ज्ञान दिया जाता है भक्तों के द्वारा वो क्यों वो ज्ञान है जो शास्त्रों में है, और शास्त्रों में ये निर्णय है, शास्त्रों में निर्णय है कि अध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है। जैसे आप मछली को जल के बाहर निकालोगे मछली जी पाएगी, उसी प्रकार अध्यात्मिकता के बिना नहीं सकते। तो अद्वैताचार्य प्रकट हुए थे पतितों के उद्धार के लिए, जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा मेरे कार्य असंभव है, महावेश में भगवान के विस्तार है, मेरी इच्छा है कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो। तो बड़े गहराई के साथ गंभीरता के साथ अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर बैठकर तुलसी और जल के साथ उनकी एक शालिग्राम शिला थी। शालिग्राम शिला भगवान का रूप होता है जो कि पत्थर के रूप में प्रकट होता है। एक शालिग्राम शिला थी, उस शालिग्राम शिला की पूजा की। उनके साथ थे हरिदास ठाकुर जो भागवतम पढ़ते थे और दिन रात हरिनाम करते थे उनके साथ। तो दोनों ने मिलकर बड़े गहराई के साथ प्रार्थना की और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से हरि का नाम भागवत का उच्चारण और भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप ही पतियों को उद्धार कर सकते, हमारे लिए कार्य असंभव है। भगवान ने सुना ये प्रार्थना, भगवान ने निर्णय किया कि मैं प्रकट हूंगा और भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? भगवान के अवतार हैं जो कि प्रकट हुए उद्धार हुए। तो अद्वैत आचार्य के कारण भगवान प्रकट हुए। मैं अद्वैत आचार्य के विषय में कोई श्लोक है चैतन्य चतुर्विध में पढ़ के सुनाता हूं। महाविष्णु ने पूरी पृथ्वी का निर्माण किया था। He delivered all living beings by offering the gift of Krishna bhakti, explained the Bhagavad Gita and Bhagavatam, night and emotional service. तो अद्वैत आचार्य ने परिंदों का उद्धार कैसे किया? कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर उन्होंने सबको भगवद गीता और भगवत का उपदेश दिया। उनके मन में एक ही भाव था, सब क्या? लोगों को सुखी बनाना कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो अद्वैत आचार्य के प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी। उन्होंने महान संत थे महादेवेंद्र भूमि जो कि रहते थे वृंदावन में, उन्होंने गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। पूरी भारत का भ्रमण कर रहे थे कि वो शांतिपुर आए। आप जानते हो शांतिपुर कहाँ है? एक या दो घंटे की दूरी पर। हर साल वहां हम लोग भक्तों को विशाल करते। तो अद्वैत आचार्य मानसपुरी आए शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य से मिले और अद्वैत आचार्य को शिक्षा दी भक्ति के विषय में। फिर अद्वैत आचार्य ने मानसपुरी से शिक्षा ग्रहण की। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे उनकी माता का नाम था सच्ची माता, पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता ने बहुत प्रयास किया महाप्रभु को दूध पिलाने के लिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के स्तन से दूध पीता है, पर निमाई ने स्तन से माँ के स्तन से दूध पीना इनकार कर दिया। जब अद्वैत आचार्य भी प्रकट हुए थे बचपन में वो रोना बंद करते थे जब पड़ोस की औरतें हरि नाम का उच्चारण करती थी, और महाप्रभु भी रोना बंद करते थे जब हरि नाम सुनते थे। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा बड़ी चिंता में थे, अभी क्या किया जाए, बेटा दूध ही नहीं पीता। मां घबरा गई तो अद्वैत आचार्य के पास गए, मेरा दूध ही नहीं पीना। तो अद्वैत आचार्य ने कहा क्योंकि आप दोनों ने दीक्षा नहीं ली है, मेरा केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। अद्वैत आचार्य ने सच्ची माता जगन्नाथ ने सर्व दीक्षा दी, फिर महाप्रभु ने निमाई ने दूध पीना आरंभ कर दिया। तो विभिन्न चरण की लीलाएं भी थी अनेक, और महाप्रभु की अनुभूतियां तो रही थी चर्चा शास्त्र में। अद्वैता छाया महाप्रभु को बहुत ही आदर दे रहे थे। अद्वैता छाया सोचते थे, मैं पता था महाप्रभु स्वयं तो महाप्रभु जो है वो खुश नहीं थे। महाप्रभु अद्वैता छाया को बहुत आदर क्यों दे रहे थे? अद्वैता छाया उनके गुरु के गुरु भाई थे। गुरु का नाम क्या था? क्या था? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। महाप्रभु ने बहुत आदर दे रहे थे। अद्वैता छाया को ये अच्छा नहीं लगता था। अद्वैता छाया कहते थे, आप तो स्वयं भगवान हो, आप मुझे इतना आदर क्यों देते हो? तो अद्वैता छाया ने सोचा कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे महाप्रभु को गुस्सा आ जाएगा। महाप्रभु ने अपने प्रचार के द्वारा ये स्थापित किया कि भगवान साकार है, भगवान का दिव्य रूप है। ये सोचा कि भगवान निराकार है, इन पर महान अपराध। वेदाचार्य ने मायावादी प्रचार शुरू कर दिया, तुम भगवान, हम भगवान, सब भगवान। भगवान तो निराकार है, कौन कहते भगवान साकार है, कौन कहते भगवान का रूप है। तो क्षेत्र ने महाप्रभु तक ये सूचना पहुंची कि अद्वैताचार्य तो अभी निराकार बन गए, मायावादी बन गए, कहते हम सब भगवान है। भगवान ने नित्यानंद से पूछा, तुमने भी सुना है क्या अद्वैताचार्य क्या प्रचार कर रहा है आजकल? नित्यानंद ने कहा, मैं भी आश्चर्य हूं ये सुनकर। महाप्रभु बड़े गुस्से में गए, ये सच है क्या? तुम भगवान, हम भगवान, हम सब भगवान है। तो हाँ बिल्कुल सच है। महाप्रभु गुस्से होकर पैर से मारा था देने चढ़ा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत ज्यादा आदर दे रहे थे। मेरी इच्छा थी कि आप मुझे डांटो। मैं खुश हरिदास ठाकुर जैसे हमने कहा उन्हें जन्म हुआ था मायावती खानदान में, मुसलमान खानदान में। तो उन दिनों में भारत हिंदुओं का समाज तो बड़े कड़क नियम थे। अगर आपने किसी मुसलमान के घर में खा लिया तो मुसलमान बन गए। अगर एक मुसलमान अपनी बाल्टी से थोड़ा पानी आपके ऊपर फेंक दे और गए। एक कथा है सुमती रॉय की, एक भक्त थे भगवान के, नाम था सुबोधी रॉय। बड़े जमींदार थे, चापलूसी करके उनका नौकरी या सेवक हुसैन शाह ने उनकी सारी संपत्ति घेर ली। कभी कभी होता है ना, नौकर मालिक की सारी संपत्ति लूट लेता है। और सुबोधी रॉय गरीब बन गए। एक दिन हुसैन शाह की पत्नी ने देखा कि पति के पीठ में एक लकीर की निशानी है। तो पति ने पूछा, ये कैसे, किसने मारा तुम्हें? तो पति ने कहा, जब मैं छोटा था सुबोधी रॉय के घर में नौकर, तो मैंने भी गलतियां की थी जिसके कारण सुबोधी रॉय ने मुझे प्रेम से डांटा था, लकीर हुए मैं प्रेम से मानकर। तो अब से तुम राजा बन गए हो, मार दो उसे, बदला लो। उसकी क्या हिम्मत थी? राजा ने कहा मैं कैसे करूं, मुझे तो सुमित बाबा ने बेटे जैसे पाला था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ने कहा अच्छा तो कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो, मानना नहीं चाहते। तो वो हुसैन शाह ने सुमित बाबा को बुलाया, अपनी बाल्टी से पानी थोड़ा फेंक कर थोड़ा पानी उनके शरीर में फेंका, उसका हिंदू जमाने का अब फिर मुसलमान बन गया। आप तो हमारे घर में नहीं आ सकते। सुमित बाबा की पत्नी अपने सुंदरों ने कहा अब तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, तो तुम मुसलमान बन गए हो, हमारे घर में नहीं आ सकते। सुमित बाबा चिंता में क्या करें, तो उन्होंने वाराणसी के ब्राह्मण को पूछा इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा उबल गए घी को पीकर आप हत्या कर लो। तो सुमित बाबा फिर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को मिले, महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा। महाप्रभु ने कहा वृंदावन में जाओ और हरि नाम का उच्चारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा का प्रचार किया और अद्भुत आचार्य ने, तो हरिदास ठाकुर को अद्भुत आचार्य ने बहुत आदर दिया, उनके रहने के लिए प्रबंध भी किया। क्या बनाए हरिदास कहता था आप मुझे इतना आदर दे रहे हो, हिंदू समाज ब्राह्मणों का आपका विरोध करेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। चढ़ने का हंसी उड़ाने का मैं जानता हूं कि तो कोई साधारण भक्त नहीं। जैसे कि जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया कई ने विरोध किया, आज भारत के दो तीन मंदिर हैं जहाँ के हमारे विदेशी भक्त अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें जन्म हुआ था विदेश में, हिंदू खाना में नहीं। भगवान तो सबके लिए व्यक्ति बनता है भक्त गुरु के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो चित्र हरिदास ठाकुर ने कहा आप जो हो आप ऊंचे कुली के ब्राह्मण हो, मुझे कोई चिंता नहीं कि आप चिंता करेंगे। आगे अद्वैत आचार्य ने श्रद्धा पात्र होता है जो कि वो मनाया जाता है ब्राह्मण को दिन पर भोजन खाया जाता है। अद्वैत आचार्य ने हरिदास से कहा मैं चाहता हूं ईश्वर पात्र आपको दिया जाए। हरिदास ने कहा मुझे पूरा ब्राह्मण समाज आपका विरोध करेगा, और अद्वैत आचार्य ने कहा विरोध करेगा आपको प्रसाद खिलाना 10,00,000 ब्राह्मण का प्रसाद खिलाने के बराबर है। 10,00,000 प्रचार किया। तो सच्ची माता थी भगवान की माता, सच्ची माता के हृदय में थोड़ा क्रोध था अद्वैत आचार्य के प्रति। उनके बड़े बेटे का नाम था विष्णु, विष्णु माई के विष्णु के बड़े भाई थे। तो विष्णु सारा दिन अद्वैत आचार्य की संगत में रहते थे, उनके साथ बैठना भागवतम पढ़ना हरिनाम करना और विष्णु माँ की इच्छा थी विष्णु का विवाह हो। विष्णु ने घर छोड़कर सन्यास ले लिया, तो जब सच्ची माता को पता लगा बड़ी दुखी हुई, सन्यास ले लिया। उन्होंने ज्यादा आकर्षण छोड़े हुए विष्णु की प्रति कर दिया, तो सच्ची माता के हृदय में थोड़ा क्रोध था किसके विषय में, अरे छाया के विषय में। तो भक्त भगवान से कहते थे, और सब पर दया कर रहे हो पर आप अपनी मां पर दया क्यों नहीं कर रहे, सबको आप आशीर्वाद दे रहे हो, अभी माँ का आशीर्वाद नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। वेदे चढ़े मां को मिलना, मेरी माता ने क्रोध किया है, मेरी माता ने अपराध किया है। क्या था उनका अपराध? केवल के मन ही मन में ये भाव था कि अद्वेता जो है, अद्वेता नहीं पर क्या है द्वेता, ये डबल डुप्लीसिट आदमी है, बाहर से भक्त बनता है अंदर से मेरे बच्चों को शिक्षा देता है जाओ सन्यास लो। तो उनके मन में क्रोध था किसके प्रति, तो जब सच्ची माता को ये अद्वैताचार्य को भक्तों ने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि सच्ची माता ने आपके विषय में अपराध किया है, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, सच्ची माता तो देवकी यशोदा की अवतार है, वो अपराध कैसे कर सकती है, ये गलत है, ये गलत है। सच्ची माता की महिमा, उसकी महिमा तो इतनी महान है, अब जितना भी करें उतना कम है। और सच्ची माता का गुणगान करते हुए बेहोश हो गए भक्ति भाव में। जब महाप्रभु के भक्त ने देखा बेहोश हो गए, उन्होंने सच्ची माता आओ जल्दी धू ले लो, अंदर चढ़िया की चरणों से। पहले सच्ची माता ने बहुत प्रयास किया धू लेने के लिए, अंदर चढ़िया ने धू नहीं लेने दिया, अब वो बेहोश थे। फिर सच्ची माता जल्दी से आई, वो भी चरणों से धू लेकर वो भी बेहोश। भक्त ने महाप्रभु सूचना दी, सच्ची माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल ले ली है, बेहोश हो गए भक्ति भाव से। महाप्रभु फिर भक्त ने कीर्तन किया, दोनों होश हो गए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई भक्तों के जीवन में हमें वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। भगवान ने अपनी माता के उदाहरण से ये बताया कि आप चाहे कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, अपराधों का आपका ये जो उत्सव है बड़े शुभ अवसर पर स्थापित हुआ है, आज बड़ा शुभ दिन है वेदाचार्य का जन्म है। तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो, आप भक्ति में जुड़े हो। प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले एक अखबार छापते थे बैटरी बॉर्ड, तो एक एडिशन उन्होंने एक आर्टिकल छापा सॉरी नो टाइम, समझ गए माफ करो समय नहीं है। आप कई को निमंत्रण देते हो आओ अध्यात्मिक में रुचि हो तो क्या कहते हैं सॉरी नो टाइम। तो प्रभुपाद जी ने उस लेख में लिखा कि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिले थे, उसे कह रहे थे अध्यात्मिक में रुचि लो, स्वामी जी हम जानते नहीं हो, आई एम वेरी बिजी सॉरी नो टाइम। अगले दिन उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया। तो हम कह रहे सॉरी नो टाइम, ये जानने की मृत्यु किसी समय भी आ सकती है, सच है झूठ, हर कदम पर खतरा है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश आने की संभावना रहती है, अब छाता लेकर निकलते हो, उसी प्रकार भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश। और अगर हम इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं तो यही उपाय है ओम मंत्र। तो आप सब पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो, हर टाइम बोलते हैं तो भौतिक ज्ञान के साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करना चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहां की हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है, और सब चुप हो गए। तो आज बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पर ये अवश्य ज्ञान कौन दे रहा है? तो इस्कॉन क्या है? इस्कॉन इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस्कॉन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहां क्या आपको वो शिक्षा दी जा रही है तो और कोई नहीं दे रहा। बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े महंत हैं, तो कोई शिक्षा ये दे रहा है मृत्यु के बाद कहां जाओगे? और ये है आज की शिक्षा, आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग, कैसे जीना कैसे मरना, ये शिक्षा गीता में है। तो गीता हमें बकायदा पढ़ना चाहिए। आप में से कितने भक्तों के पास भगवद गीता की कॉपी है? सबके पास। कितने भक्त जो कि गीता को ठीक है पढ़ते हो? बहुत कम। पर गीता को पढ़िए, गीता को पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान की सेवा कर पाओगे। कहां सब क्यों भारी है, क्या आध्यात्मिक में रुचि ले रहे हो? आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा। भौतिक समाज में भी अगर आपको सफलता चाहिए डिटर्मिनेशन चाहिए या नहीं? जब आप भक्ति में जुड़ते हो, कई लोग प्रयास करेंगे आपको विचलित करने के लिए। हमारी ये भावना है, भक्ति चाहिए। आप सबसे निवेदन, शिक्षक भेजिए, साधु संग में रहिए। गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो कीमत ही भरनी पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को मन प्रसन्न करो। ये हमारा निवेदन आपसे, गीता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिए, आपके जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.